वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक अस्थिरता और बदलती चुनौतियों के बीच भारत ने ब्रिक्स आर्थिक समूह की अध्यक्षता संभाल ली है। मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता की थीम और लोगो लॉन्च किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का उल्लेख किया।
Over the years, BRICS has expanded its agenda and membership, responding to changing global realities while remaining focused on people-centric development, fostering dialogue and promoting practical cooperation. The current global environment presents complex and interlinked challenges, geopolitical uncertainties, complicated economic landscapes, climate-related risks, technological changes, and persistent development gaps continue to affect countries across regions. In this context, BRICS remains an important forum that encourages dialogue and cooperation and practical responses.
उन्होंने बताया कि भारत की अध्यक्षता मानवता पहले और जन केंद्रित के सिद्धांतों पर केंद्रित रहेगी।
India approaches its chairship with a humanity first and a people centric approach, inspired by the guidance of Prime Minister Narendra Modi. Our chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, reflects our belief that cooperation among BRICS members can help address shared challenges in a balanced and in an inclusive manner. The theme underscores the importance of strengthening capacities, promoting innovation, and ensuring sustainable development for the benefit of all. The logo that we unveiled today reflects this approach. It combines elements of tradition and modernity, and the petals incorporate the colors of all BRICS member countries, representing unity in diversity.
बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल पर भारत की करीबी नजर है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आश्वस्त किया है कि बांग्लादेशी सेना की कोई कार्रवाई भारत के विरुद्ध नहीं है। मंगलवार को सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सैन्य संचार चैनल्स खुले हुए हैं।
तीनों सेनाओं ने अपने अपने चैनल्स पूरे खुले रखे हैं। भारतीय सेना ने तो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रखे हुए हैं, जो उनके वहाँ पे चीफ हैं उनके से मेरी रेगुलर बात होती रहती है। उसी प्रकार से हमारे बाकी चैनल से भी हमें एक दूसरे से बातचीत होती रहती है। आपको ये भी याद होगा कि हमने एक डेलीगेशन भी वहाँ भेजा था जिसने वहाँ पे सबसे जाके मुलाकात की थी। उसी प्रकार से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बात की है, उसी प्रकार से चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बात की है। इरादा ये है कि किसी प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो मैं आपको यही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आज की तारीख पे जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, तीनों सेनाओं जो कार्रवाई कर रही हैं, वो किसी भारत के किसी प्रकार के खिलाफ की कार्रवाई नहीं है। जहाँ तक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की अब बात करें, तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एक चीज़ है जो चलती रहती है पूरे वक्त। भारत भी कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं।
शक्सगाम घाटी पर चीनी दावे और उसके द्वारा किए जा रहे विकास परियोजनाओं को भारत ने अवैध करार दिया है। इस संबंध में पूछे गए सवाल पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहते हैं,
इंडिया कंसीडर्स 1963 एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान चाइना एज इलीगल, देयरफॉर एनी एक्टिविटी इन शक्सगाम वैली इज कंसर्न वी डू नॉट अप्रूव ऑफ इट एंड इन दिस टर्म्स एमईए हैज ऑलरेडी इशूड दिस स्टेटमेंट। Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations.
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया हुआ है। इस प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा और आरएसएस नेताओं से मुलाकात की है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर चीन विरोध का ढोंग करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस मुद्दे पर भाजपा को घेरा।
करिए बैठक, मैं कह रहा हूं फिर से, हमें बैठकों में दिक्कत नहीं होती रहनी चाहिए, लेकिन देश के हितों के साथ समझौता करने के लिए नहीं होनी चाहिए। देश के हितों से समझौता करने वाले के साथ जब आप बैठकें करते हो तो आंखों में आंखें डाल के सवाल जरूर पूछना चाहिए आपको और देश को जवाब दिलवाना चाहिए। क्या इन मीटिंग्स में पिछले कुछ सालों से चीन के अधिकारियों द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई भारतीय नागरिकों को हिरासत में लेने की भी बात की है? जरा वो भी बताइए। हमारे लोग बॉर्डर से उठा लिए जाते हैं, हिरासत में ले लिए जाते हैं, यहां से कुछ आवाज नहीं आती, चुप। कितना कितना हमारे हितों का आप समझौता करेंगे।
मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़ा करते हुए पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले बोले।
अमेरिका ने डांटा तो चीन के पास चले गए, चीन ने डांटा अमेरिका के पास चले गए। कोई बच्चे हो, इधर से डांट पड़ी उधर चले गए, मम्मी ने डांटा पापा के पास चले गए, पापा ने डांटा मम्मी के पास चले गए, दोनों ने डांटा नाना नानी के पास चले गए, दादा दादी के पास। क्या मजाक बना रखा है साहब आपने, ये विदेश नीति है, इसको गंभीरता से लीजिए।
चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ भाजपा नेताओं की बैठक का पार्टी ने बचाव किया है। पार्टी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा इसको लेकर कहते हैं,
पिछले कुछ दिनों में जो है इंडियन ट्रूप्स जो है दोबारा वहां पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं जो 1962 से नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज हम बहुत खुल के करते हैं, पिछले कुछ दिनों में फ्लाइट्स भी आरंभ हुई हैं, ट्रेड पर भी बात चल रही है। हम चोरी छुपे कोई ऐसा MOU नहीं करते हैं जो सालों साल जो है हम जिसका जवाब नहीं दे पाए। एक फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं जब स्थिति बेहतर होती है, और यह एक फॉर्मल मीटिंग का प्रक्रिया था।
विदेश नीति पर सवाल उठाने पर तुहिन सिन्हा ने कांग्रेस पर पलटवार किया, साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना भी की।
हमारे ट्रूप्स ने अरुणाचल में ढकेल कर वापस एक इंट्रूशन को समाप्त किया था, तो उस समय भी राहुल गांधी ने झूठ पेडल किया था, कहा था कि हमारी सेना के लोग पिटे गए हैं। जब डोकलम हो रहा था तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में बैठकर, तो राहुल गांधी की तुलना ही हमारे लोग से नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो किया है उसके बाद उन्हें अधिकार ही नहीं है कि वो हमारी विदेश नीति पर सवाल उठाए।
भले ही राजधानी दिल्ली का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन आज मकर संक्रांति की सुबह अत्यधिक ठंडी रही। शीतलहर और कोहरे के बीच शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक भी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। जहरीली हवाओं और कोहरे की मार का असर स्वास्थ्य एवं यातायात पर पड़ रहा है। वैसे समूचे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में कई जगहों पर तापमान 5 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।